Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayana Narayana, Narayana Narayana. तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक के मंत्र चल रहे हैं। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः। सेवा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयम् दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदम् पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येषो श्लोको भवति। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण किया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत स्वरूप है और अनंत है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, और ब्रह्म स्वयं में एक अनंत वस्तु है। अनंत का एक अर्थ तो विशाल बृहद होता है, जिसका अंत न हो। लेकिन जिसका अंत न हो उसकी परिकल्पना बुद्धि में हो नहीं सकती है, आप उसका भाव नहीं कर सकते, अनंत को बुद्धि में नहीं ले सकते। वो शायद किसी ने कहा ना, संभवतः प्रेमपुरी जी महाराज का ही है, तो बड़े व्याकुल थे, तो अनंत की अनुभूति नहीं होती। तो कोई माई आई तो उसने कहा कि सारी गंगा जी का पानी इस कटोरे में डाल दो तो मैं तुम्हें अनंत का अनुभव करा दूंगी। बोले वो तो गंगा, सारे गंगा जी का पानी तो कटोरे में नहीं आ सकता। तो बोले जो कटोरे में पानी आ गया क्या वो गंगा जल नहीं है? गंगा जल तो है। तो ये गंगा जल है और ये वही गंगा जल है जो अनंत प्रवाह के रूप में सामने बह रहा है। तो बुद्धि अनंत का मतलब किसी कल्पना कोई नहीं होती है कि बड़ा लंबा चौड़ा काल में देश में। जितनी भी कल्पनाएं बुद्धि में उठती हैं, अंतःकरण में उठती हैं, वो सब अनंत ब्रह्म में ही उठती हैं। उनका नाम, उनका रूप, ये तो सब परिच्छिन्न ही होता है और उन शब्दों का अर्थ भी परिच्छिन्न ही होता है। परंतु शब्द का अर्थ तो हो परिच्छिन्न और ज्ञान हो अपरिच्छिन्न का, ये भी संभव है। वो अपने जगन्नाथपुरी के जो शंकराचार्य जी हैं, स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, तो वो एक सूत्र बोलते हैं। वो कहते हैं आप अपना मुंह नहीं देख सकते तो इसको देखने के लिए क्या करें? बोले सामने दर्पण रखो। तो दर्पण में आप क्या देखेंगे? अब मुंह तो नहीं देखेंगे ना, तो देखते तो हैं मुंह की छाया, मुंह का प्रतिबिंब, और अनुभव होता है अपने मुंह का कि मेरा मुंह ऐसा ही है। इसी प्रकार से अंतःकरण में जितने भाव उठते हैं वो सब शांत ही उठते हैं, परिच्छिन्न ही उठते हैं, तो उन्हें उठने दीजिए, वो तो अंतःकरण का स्वभाव ही है। लेकिन आपकी बुद्धि जो है वो वेदांत ज्ञान से इतनी बढ़िया हो जानी चाहिए कि बुद्धि उसका अर्थ करे ब्रह्म, क्योंकि अंतःकरण जो है वो पुरानी स्मृतियों से और वर्तमान के इंद्रियों के ज्ञान से बंधा रहता है। इंद्रियां परिच्छिन्न को ही ग्रहण करती हैं और पुरानी स्मृतियां जो हैं वो भी इंद्रियों से ही ग्रहण की हुई हैं पहले, तो अंतःकरण में जो कुछ भी उठता है वो सब का सब परिच्छिन्न रूप से ही उठता है। अब बुद्धि को इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जो परिच्छिन्न है सो ब्रह्म नहीं है। तो परिच्छिन्न के अभाव का जो अधिष्ठान है उसको ब्रह्म बोलते हैं नारायण। ये जरा मैंने पारिभाषिक शब्द बोल दिया। उठेगा तो परिच्छिन्न सीमित, लेकिन वो कहां उठेगा? तो जिस आश्रय में, जिस अधिष्ठान में वो उठता है वो सीमित नहीं है, ऐसा बुद्धि में वेदांत के द्वारा बोध होना चाहिए, तब फिर हर चीज का अर्थ ब्रह्म ही हो जाएगा। और अगर वेदांत से ये ज्ञान नहीं हुआ है तो कहेंगे कि वृत्ति तो परिच्छिन्न को ही पकड़ेगी, अपरिच्छिन्न कैसे आ सकता है उसमें? तो नहीं आ सकता, ठीक है, ये रैशनल थिंकिंग बोलते हैं आजकल, और अपने यहां इसको कुतर्क बोलते हैं। कुतर्क माने जो जिस जैसे सोचने की आपको आदत पड़ गई है बस वैसे ही सोचते हो, उसी को आप रैशनल बोलते हो, और जो उपनिषद कहता है कि ऐसे सोचो उसको न तो ठीक मानते हैं और न उसका अभ्यास करते हैं। तो जब तक ये रहता है तब तक इसको कुतर्क बोलते हैं, तो वो कुतर्क जो है तत्व ज्ञान होने नहीं देगा, ये प्रतिबंध है। कुतर्क जो है तत्व ज्ञान का प्रतिबंध नारायण। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये उसका लक्षण है। और अनंत का अर्थ है कि जितने भी शांत पदार्थ हैं, चाहे वो देश में परिच्छिन्न हो, चाहे काल में परिच्छिन्न हो, चाहे वस्तु से परिच्छिन्न हो, वो सब अपने अभाव के अधिष्ठान में ही प्रतीत हो रहे हैं, माने वहीं प्रतीत हो रहे हैं जहां वो नहीं है। रस्सी में जो सांप प्रतीत होता है वो सांप वहीं प्रतीत होता है जिस रस्सी में वो नहीं है, या दूसरी जगह प्रतीत होता है, रस्सी में ही प्रतीत होता है ना, और रस्सी में सांप है नहीं, इसलिए सर्प को मिथ्या बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जितने ये परिच्छिन्न भाव विचार संकल्प विकल्प उदय होते हैं, इनको तो उदय होने दीजिए, ये अपने आप ही उदय होते हैं, आप इसमें प्रयत्न करके उदय नहीं कर सकते। लेकिन इसमें देखिए कि एक अखंड वस्तु ही इनमें उदय हो रही है, जैसे समुद्र जो है वो हर लहर में अखंड ही रहता है, चाहे लहर छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अब इसकी सत्यता की और अनंतता की सिद्धि के लिए इस ब्रह्म को जगत का कारण बताया जाता है, क्योंकि जगत में सत्यत्व बुद्धि है और आकाश में अनंतता की बुद्धि है देश से, तो इसलिए इनका जो कारण होगा वो तो और भी ज्यादा अनंत होगा। तो कल इसके बारे में चर्चा हुई थी, अब आज दूसरे ढंग से इन पर विचार करते हैं। तस्माद् वाये तस्मात् आत्मना आकाशः संभूतः, उस पर ब्रह्म परमात्मा से जो निश्चय ये आत्मा ही है, उस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति होती है। तो कल निवेदन किया था सुरेश्वराचार्य जी महाराज का, उन्होंने कहा कि निर्गुण ब्रह्म से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए इसमें अध्याहार करना चाहिए कि ब्रह्म में माया के द्वार से ये आकाश आदि की उत्पत्ति होती है। और पर उसी सिलसिले में ये बात बताई थी कि जो माया से चीज उत्पन्न होती है वो वास्तव में होती नहीं है, वो या तो जादूगर का ऐश्वर्य बताने के लिए है और या तो जिस अधिष्ठान में वो प्रतीत हो रहा है जादू का खेल, उस अधिष्ठान की महिमा उससे प्रकट होती है। ये इतना बड़ा संसार स्फुरित हो रहा है, इससे इसके बनाने वाले की महिमा प्रकट होती है और उस ब्रह्म की महिमा प्रकट होती है जो प्रत्येक नाम में प्रत्येक रूप में स्फुरित हो रहा है। आप अपने को छोटा क्यों मानते हो? जब हम किसी चीज को भोग करना चाहते हैं तो भोगता भोग्य वस्तु जो है वो बड़ी हो जाती है और जो भोगता है वो छोटा हो जाता है। जब हम किसी चीज को अन्य रूप से जानना चाहते हैं तो जिसको जानना चाहते हैं अन्य रूप से वो चीज छोटी हो जाती है और जो जानने वो चीज बड़ी हो जाती है, महत्व उसका बढ़ जाता है और जो जानने वाला है उसका महत्व तो छोटा हो जाता। माने उसको जाने बिना तुम कंगाल हो। इसी प्रकार से कुछ कर्म किए बिना यदि हमें खटकता है कि ये कर्म करना चाहिए नारायण, तो तब भी कंगाल ही हो। तो ये समझो कि ये सब माया में है। जितना कर्म है, जितना ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है, जितना भोक्ता भोग भोग्य का आनंद है, ये सब माया की प्रतीति है। माया का खेल का आनंद लिया जाता है। अगर आप उसकी भीतरी बात जानना चाहोगे तो आपका मजा बिगड़ जाएगा। जैसा दिख रहा है वैसे ही ठीक है, तो माया के द्वार से। अब ये माया भी नारायण वेदांत में टेक्निकल शब्द है। माया शब्द का प्रयोग जो है वो सारे दर्शन शास्त्र करते हैं, लेकिन सबकी व्याख्या अपने अपने ढंग की अलग होती है। जब वैष्णव लोग माया शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो इस अर्थ में करते हैं कि ईश्वर में एक ऐसी शक्ति है जो जगत की रचना कर सकती है और उसके बिना ईश्वर जगत की रचना नहीं कर सकता, और ईश्वर हमेशा माया के सहित ही रहता है, कभी उसकी पत्नी माया जो है वो मायके भी नहीं जाती। हाँ, हमेशा साथ साथ रहते हैं। ये वैष्णव सिद्धांत में माया का कॉन्सेप्ट है और वेदांत में जो माया है, मतलब इससे मिलते जुलते ही कॉन्सेप्ट बाकी दर्शनों में है, लेकिन वेदांत की जो माया है वो बिल्कुल विलक्षण है। एक तो ये स्वतः सांख्यों की प्रकृति की तरह से ये स्वतंत्र नहीं है, पुरुष से स्वतंत्र माया नहीं है, लेकिन पुरुष के अधीन भी नहीं है, पुरुष के संकल्प के अधीन है। जैसा जैसा पुरुष संकल्प करता है, वो आजकल की भाषा में कहें कि पुरुष तो है डायरेक्टर और माया है एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटिव हेड है। जैसा डायरेक्शन देता है वैसा ही वो उसे बस कर देती है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेयो जगत में परिवर्तित है। और ये वेदांत में इसको थोड़ी स्वीकृति है, पूरी स्वीकृति नहीं है। अब माया वेदांत में किस रूप से स्वीकार्य है, तो इसके सात अंग हैं माया के। एक तो है निस्तत्वा, कुछ अपने में तो ये कोई चीज ही नहीं है, तत्व नहीं है, सिर्फ एक आरोपित चीज है। जैसे इसने ऐसा कैसे दिखा दिया, तो बोले इसमें कोई शक्ति होगी। शक्ति दिखती नहीं है, कोई शक्ति होगी ऐसा अनुमान होता है उसके कार्य को देख करके। तो उसमें तत्व तो कुछ नहीं है, लेकिन कार्यगम्य, एक निस्तत्व है और दूसरी कार्यगम्य है, तीसरी ये अनिर्वचनीय है। इसे आप शब्दों में बांध करके नहीं रख सकते हो, न इसे सत्य कह सकते हो, न इसे असत्य कह सकते हो, न इसे सत्य असत्य कह सकते हो, इसको ही अनिर्वचनीय बोलते हैं। तीन हो गई, चौथा है भाव रूपा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। वेदांती लोग जो शास्त्र से नहीं पढ़ते हैं और ऐसे ही लोगों से सुन देते हैं, माया तो है ही नहीं, संसार तो है ही नहीं, बस ये तो रट लेते हैं नारायण। लेकिन लोग मतलब कहना क्या चाहते हैं, संसार है ही नहीं, ये सिद्धांत नहीं है वेदांत का। वेदांत का सिद्धांत है ब्रह्म में संसार नहीं है। स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने लिखा है कि ये अर्ध सत्य है, संसार असत्य है, मिथ्या है, ये अर्ध सत्य है। जब तक आप अधिष्ठान नहीं बताते हो तब तक बात पूरी नहीं होती है। ब्रह्म में ये जगत मिथ्या है, और सीधे ये कहो कि जगत मिथ्या है, तो फिर बोल क्या को रहे हो नारायण, सुन क्यों रहे हो, बैठे क्यों हो, चलते क्यों, सारी सब पर आक्षेप आता है। तो ब्रह्म के स्वरूप में ये जगत ब्रह्म से पृथक कोई वस्तु नहीं है, ये कहने का मतलब है। ऐसे ही निस्तत्व का मतलब है कि ब्रह्म में इसका पृथक कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अनुमान से इसकी सिद्धि होती है। इतना बड़ा जगत कैसे आ जाता अगर कोई शक्ति ना होती तो। अनुमान जो है वो प्रमाण नहीं होता है हमेशा, जब तक उसका प्रत्यक्ष ना हो जाए तब तक अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। आपने धुआं देखा, बोले आंच अग्नि होनी चाहिए यहां, अब जब पास पर पहुंचे तो देखा वहां तो बर्फ की सिल्ली रखी थी, उनमें से भी धुएं का धुआं तो नहीं उठता है, वो आसपास की जो वायु है वो जम जाती है तो वो धुएं जैसी मालूम पड़ती है। तो वहां अग्नि नहीं मिली, इसलिए वो अनुमान जो था वो आपका गलत हो गया। अनुमान तभी प्रमाण होता है जब वो प्रत्यक्ष के पीछे जाकर के सिद्ध हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए। तो प्रकृति का माया का कोई अनुभव कर नहीं सकता है, सिर्फ ये अनुमित है। सांख्यों की प्रकृति जो है इसके अगेंस्ट भी शंकराचार्य जी ने यही एक आक्षेप किया है कि ये प्रकृति कभी अनुभव का विषय नहीं होती है, नित्य अनुमित है। तो इसलिए इसको न सत्य कह सकते हैं न असत्य कह सकते हैं। इसका कार्य तो मालूम पड़ता है लेकिन कारण का अनुभव ही नहीं होता है। चार हो गए, निस्तत्व, कार्यगम्य, अनिर्वचनीय और भाव रूपा। तो अभाव रूप है, माया है ही नहीं। तो ये अच्छा, ऐसा ओवर सिंप्लीफिकेशन भी करते हैं, बोले देखो माया, माया या मां, या माने जो और मां माने नहीं, जो नहीं हो बस सोई माया है। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ये शास्त्र की बात नहीं है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज लिखते हैं कि अगर ये अभाव रूपा हो तो ये आवरण नहीं कर सकती किसी का। अभाव जो है वो किसी का आवरण नहीं करता है, इसलिए इसको भाव रूपा मानना पड़ता है। पांचवी बात है कि भाव रूपा तो है लेकिन ज्ञान निवर्त्य है, अभी ज्ञान हो जाए तो माया की निवृत्ति हो जाती है। तो निवृत्ति कहां होगी? घड़ा फूटेगा तो कुम्हार में फूटेगा कि मिट्टी में फूटेगा? जो उसका उपादान कारण है उसी में फूटेगा। तो माया दिख रही है इस समय ब्रह्म में, आत्मा में, और जब ये माया फूटेगी माने निवृत्त होगी तब काहे में फूटेगी? जिसमें दिख रही थी उसी में जाकर फूटेगी, अर्थात आत्मा ही शेष रह जाएगा। तो ये ज्ञान निवर्त्या है, ये पांच बातें तो इसमें हैं। और बोले ये शक्ति है तो दो इसकी शक्तियां हैं, एक विक्षेप और एक आवरण। आवरण माने वस्तु के स्वरूप को ढक देना, और विक्षेप माने वस्तु जैसी नहीं है वैसी उसमें प्रोजेक्ट कर देना, दिखा देना। मैं रस्सी को अंधेरे के कारण नहीं जानता, तो ये नहीं जानना जो है ये तो अज्ञान हो गया, माया हो गई। अब इसने क्या किया कि रस्सी को तो ढक दिया और उसमें सांप दिखा दिया। सांप है नहीं वहां, लेकिन जो चीज नहीं है उसको तो दिखा रही है, ये तो विक्षेप शक्ति है, और रस्सी को ढक रही है ये उसकी आवरण शक्ति है। अब नारायण हमारे यहां क्या कर रही है इस शरीर में बैठ के? लाख कहो महात्मा लोग शास्त्र के, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तो बोले नहीं, शरीर दिखता है इसलिए शरीर ही मैं हूं। तो ये माया क्या कर रही है कि आत्मा के स्वरूप को तो ढक रही है और इसमें ये जो शरीर है इसको दिखा रही है। तो जैसे इस शरीर में हो रहा है ऐसे ही संसार में भी हो रहा है। और ये जो है ना आकाश संभूतः, आकाश की उत्पत्ति हो गई परमात्मा में, तो आकाश का कोई बीज है क्या परमात्मा में? मैंने पहले से आकाश परमात्मा में मौजूद है और फिर वो निकल आता है उसमें, ये पौराणिक लोग तो सब ऐसा ही मानते हैं और ये पूर्व मीमांसक लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि सबके बीज जो हैं वो परमात्मा में रहते हैं और सृष्टि जब होती है तो फिर सब उत्पन्न हो जाते हैं नारायण। और जो वेदांत को भी थोड़ा तटस्थ रूप से पकड़ते हैं वो भी ऐसा ही मान लेते हैं। तो सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने कहा कि परमात्मा में कोई इसका माया का आकाश का बीज नहीं है। फिर अरे आकाश कल बताया ना, आकाश माने क्या कि कुछ नहीं, तो वो कुछ पोलम पोल जो है, तो जो कुछ नहीं है उस कुछ नहीं का क्या बीज होगा? तो कुछ नहीं का जो अधिष्ठान है वही स्वयं बीज है, माने ब्रह्म ही आकाश का बीज है। ऐसा या तो ऐसा बोलो और या ऐसा बोलो कि कोई बीज है ही नहीं। तो बीज नहीं है तो कहां से पैदा हो गया? तो वो लिखते हैं कि माया के दो ही कार्य हैं, जो चीज है उसको छिपा देना और जो चीज नहीं है उसको प्रकट कर देना। तो ब्रह्म के स्वरूप को तो छिपा दिया, और ब्रह्म में ये आकाश नहीं है इस आकाश के रूप को दिखा दिया। अब माया क्या आकाश पे आ गई, खत्म हो गई? बोले आकाशात वायु। अब आकाश रूप जो ब्रह्म है उसके स्वरूप को तो छिपा दिया, और उसमें वायु रूप जो वायु नहीं है, वायु का बीज आकाश में नहीं है, उस वायु को उसमें दिखा दिया। सीक्वेंस है, एक के बाद एक ये दिखाई पड़ते जाते हैं।